मोक्षमार्गसिनीतारं भीत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्राद्येयोर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते। शुक्ल ध्यानों में जो प्रारंभिक दो शुक्ल ध्यान हैं उनकी विशेष जानकारी के लिए यह सूत्र कहा जाता है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एक का आश्रय जिनके होता है, जो सवितर्क होते हैं और विचार भी जिनमें पाया जाता है, ऐसे प्रारंभ के ध्यान है। एक आश्रयो ययोस्ते एकाश्रये, जिनके जिनका आश्रय एक होता है वो एकाश्रय कहलाते हैं, अर्थात जिनका स्वामी दोनों शुक्ल प्रारंभिक दो शुक्ल ध्यानों का जो स्वामी है, प्रारंभिक दो शुक्ल ध्यानों के जो स्वामी है, उभेपि परिप्राप्त श्रुत ज्ञान निष्ठेन आरभ्येते। परिप्राप्त श्रुत ज्ञान में जो निष्ठ है उनके द्वारा दोनों शुक्ल ध्यान प्रारंभ किए जाते हैं। इत्यर्थ वितर्कश्च विचारश्च वितर्क विचारौ सह वितर्क विचाराभ्याम वर्तेते इति सवितर्क विचारे। कह रहे हैं कि वितर्क और विचार इनके साथ जो वर्तते हैं उनको सवितर्क विचार कहते हैं, अर्थात सवितर्क और सविचार दोनों को एक साथ कर दिया तो सवितर्क विचार हो गया। जैसे अनादि निधन, आदि और निधन, तो वो अनादि है और अनिधन है, लेकिन उसमें दोनों को द्वंद्व समास में, आदि और निधन को द्वंद्व समास में जोड़ लिया और फिर न करके अनादि निधन कर दिया, तो जो शुरू में अ आया है वो आदि में भी लगेगा और निधन में भी लगेगा। कि जिसका आदि, जिसकी आदि नहीं है और जिसका निधन नहीं है, अनादि निधन, वैसे यहां पर स है तो सवितर्क है और सविचार है। पूर्वे पृथक्त्व एकत्व वितर्क इत्यर्थ है। पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क कैसे हैं ये दो ध्यान, तो बोले एकाश्रय है उनका, यानी श्रुत केवली इनको प्रारंभ करते हैं, और सवितर्क और सविचार है। पर फिर भी आचार्य महाराज एक उसमें अपवाद बता रहे हैं, तत्र यथा संख्य प्रसंगे निष्ठ निवृत्त्यर्थम इदम उच्यते। अपूर्व सूत्र में यथा संख्य का प्रसंग होने पर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए आगामी सूत्र को कहते हैं अविचारण द्वितीयम। दूसरा शुक्ल ध्यान जो होता है वो सविचार ना होकर अविचार होता है। पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क सविचार होता है, दूसरा जो होता है अविचार होता है। पूर्वयोर यद् द्वितीयम् तद् अविचारम् प्रत्येतव्यम्। पहले के जो दो शुक्ल ध्यान है उनमें से जो दूसरा है वह अविचार ऐसा मान लेना। एतदुक्तं भवति, ऐसा कथन होता है कि आद्यम सवितर्कम सविचारम च भवति, द्वितीयम सवितर्कम अविचारम चेति। पहला वाला सवितर्क और सविचार होता है और दूसरा वाला सवितर्क और अविचार होता है। अभी ये शब्द जो है सवितर्क सविचार, इसकी जानकारी आगे देंगे, अभी केवल इतना है परिचय दे रहे हैं। फिर वितर्क क्या है और विचार क्या है वो आगामी दो सूत्रों में बता रहे हैं। अथ वितर्क विचारयो का प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते। अब वितर्क और विचार इनमें क्या प्रतिविशेष है, क्या भेद है, ऐसा प्रश्न करने पर अत्र यहाँ पर उच्यते कहा जाता है वितर्क श्रुतम। वितर्क शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान। अपन बोलचाल में तर्क वितर्क मत करो ऐसा बोलते हैं ना दूसरों को, तो वहां वितर्क का अर्थ होता श्रुति है, पर यहां पर जो श्रुत है वो विशेषेण तर्कणम ऊहनम वितर्क। विशेष से तर्कणाएं करना ऊहा करना वितर्क है। श्रुत ज्ञान इत्यर्थ, उसका नाम श्रुत ज्ञान है, क्योंकि श्रुत ज्ञान ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जान लेता है। मति ज्ञान तो जो एक वस्तु है सामने उसी को जानता है, पर श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान जो होता है वह अर्थाद अर्थांतर विज्ञानम श्रुत ज्ञानम, एक पदार्थ से किसी अन्य पदार्थ को जान लेना श्रुत ज्ञान है। जैसे किसी की फोटो देखी आपने पहचान लिया कि ये अमुक व्यक्ति है, फिर आप उससे और भी बहुत सारी जानकारियां निकाल लेते हैं कि इसने गोलमाल करा था और इसने ऐसी बेईमानी करी थी अथवा इसने बहुत अच्छे काम किए थे, ये सब जो जानकारी है वो आप श्रुत ज्ञान से और फिर और चीजों से पता कर लेते हैं। अथ को विचार विचार, अब विचार क्या वस्तु है, आचार्य कहते हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ व्यंजन और योग तीन वस्तुएं होती ध्यान में, ध्येय रूप। किसका ध्यान करेंगे, या तो अर्थ यानी पदार्थ का, व्यंजन यानी किसी शब्द अक्षर का, और योग माने मनोयोग वचन योग काय योग पूर्वक ध्यान करेंगे, किसी न किसी योग में रहेंगे ध्यान करते समय। तो इनकी जो संक्रांति, इनमें जो संक्रमण परिवर्तन है उसको विचार कहते हैं। अर्थो ध्येयो द्रव्यम पर्याय होगा, अर्थ का अर्थ होता है ध्येय, वो चाहे द्रव्य हो या पर्याय हो। व्यंजनम वचनम, व्यंजन का अर्थ वचन है, शब्द है, व्यंजनाचार भी कहते हैं शब्दाचार को, ज्ञानाचार के आठ भेदों में। फिर योग काय वांग मन कर्म लक्षण, मन वचन काय संबंधी योग होते हैं। और संक्रांति परिवर्तनम, संक्रांति का अर्थ होता है बदलाव परिवर्तन। द्रव्यम विहाय पर्यायम उपेति, द्रव्य को छोड़कर पर्याय पर ध्यान चला जाता है। फिर पर्यायम त्यक्त्वा द्रव्यम इत्यर्थ संक्रांति, पर्याय छोड़कर फिर द्रव्य का ध्यान करने लग जाते हैं। ये अर्थ संक्रांति प्रथम शुक्ल ध्यान में पाई जाती है, क्योंकि वो सविचार है। ये अर्थ संक्रांति हुई, माने द्रव्य और पर्याय में ध्यान अर्थांतरित हो रहा है, कभी द्रव्य उसका ध्येय है कभी पर्याय उसका ध्येय है। अरहंत की आत्मा का ध्यान करते करते अरहंत के 46 गुणों का ध्यान करने लग जाते हैं, फिर अरहंत के रूप का ध्यान करने लग जाते हैं। ध्यान अरहंत का ही चल रहा है इसलिए ध्यान है, लेकिन उसमें जो बदलाव चल रहा है द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, तो वो अर्थ संक्रांति हो गई। एकम श्रुत वचनम उपादाय, एक आगम के वचन को स्वीकार करके वचनांतरम आलंबते, दूसरे वचन का आलंबन ले लेते हैं। ओम का ध्यान करते करते अरहम का ध्यान करने लग जाते हैं, फिर अरहम का ध्यान करते करते वापस ओम का ध्यान करने लग जाते हैं। तो ये व्यंजन संक्रांति हुई, यानी वचनों की संक्रांति परिवर्तन हुआ ध्यान में। काय योगम त्यक्त्वा योगांतरं गृह्णाति, काय योग छोड़कर वचन या मनोयोग को ग्रहण करते हैं। योगांतरं च त्यक्त्वा, और उन दोनों को छोड़कर काय योगम इति, काय योग को प्राप्त हो जाते हैं। इति योग संक्रांति, ये योग संक्रांति होती है। एवं परिवर्तनम, इस तरह का परिवर्तन विचारम इत्युच्यते, विचार इस तरह कहा जाता है। तदेतत् सामान्य विशेष निर्दिष्टम चतुर्विधम धर्मम शुक्लम च पूर्व उदित गुप्त्यादि बहु प्रकार उपायम, संसार निवृत्तये मुनिर ध्यातुम अर्हति कृत परिकर्मा। ये बड़ी सुंदर बात आ रही है कि इस तरह सामान्य और विशेष रूप से कथित चार प्रकार के धर्म ध्यान और चार प्रकार के शुक्ल ध्यान को पूर्व कथित गुप्ति आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त संसार से निर्वाण को को प्राप्त करने के लिए मुनिर परिकृत परिक्रमा मुनि, यानी जिसने जो साधु कमर कस चुके हैं, एकदम बद्ध कक्ष हो चुके हैं, ऐसे कृत परिक्रमा पूरी तैयारी जो कर चुके हैं, वो इन ध्यानों को ध्याने योग्य होते हैं। तत्र फिर ध्यान में क्या करते हैं, द्रव्य परमाणुम भाव परमाणुम वा ध्यायन नाहित वितर्क सामर्थ्यम अर्थ व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता। उच्चारण की स्पष्टता जितनी आवश्यक है वाचना में, मुद्रण की भी स्पष्टता उतनी ही आवश्यक है। जैसा भी हो मुद्रण, जो इसमें स्कैन करके जो सॉफ्ट कॉपी सामने आई है उसमें कुछ विसर्ग अनुस्वार आदि अस्पष्ट है, इसलिए दूसरी प्रति को हम अभी उद्घाटित कर रहे हैं। आ गया। कृत परिक्रमा तत्र वहां द्रव्य परमाणु भाव परमाणु वा ध्यायन, द्रव्य परमाणु का अथवा भाव परमाणु का ध्यान करते हुए आहित वितर्क सामर्थ्यात प्राप्त हुए श्रुत ज्ञान की शक्ति से अर्थ व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता। अर्थ व्यंजन इन दोनों में, काय वचन इन दोनों में पृथक्त्वेन पृथक रूप से संक्रामता परिवर्तन करने वाले मनसा मन के द्वारा पर्याप्त बलोत्साहवत् अव्यवस्थितेन नानिशितेनापि शस्त्रेण। मनसा पर्याप्त साथ में है कि अलग अलग? ठीक है, तो ऐसे संक्रमण करने वाले मन से जो ध्यान लगा रहे हैं साधु, तो उसमें क्या है, अपर्याप्त बलोत्साह, जितना बल और जितना उत्साह आवश्यक है वो पर्याप्त नहीं है, और उसके कारण अव्यवस्थितेन अनिश्चितेन आपि शस्त्रेण, ऐसे कुलाड़ी का वार कर रहे हैं लेकिन कभी इधर पड़ता है, कभी इधर पड़ता है, कभी इधर बाजू में पड़ता है, एकदम एक जगह वो वार नहीं हो पा रहा है, और वो कुलाड़ी भी अनिश्चितेन शार्प नहीं है। ये प्रथम शुक्ल ध्यान की कुलाड़ी जो है बहुत पैनी नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, तो ऐसी मौथली धार वाली कुलाड़ी से चिरात तरुण छिन्दनेव, बहुत देर बाद पेड़ जो कोई सूखा पेड़ काटता है तो बड़ी देर में ऐसी कुलाड़ी से वो पेड़ कट पाता है, बस उसी प्रकार मोह प्रकृति ही उपशमयन क्षपयंश्च। मोह प्रकृति का वो या तो उपशम करते हैं या क्षपण करते हैं। पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान आठवें से दसवें गुणस्थान तक बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, तो उन गुणस्थानों में ये विचार होता है, अर्थ व्यंजन योग में संक्रमण होता है, तो संक्रमण होने के कारण ऐसे एकदम एक जगह वो वार नहीं हो पाता, आजू बाजू कभी इधर इधर पड़ता रहता है, और धार भी पैनी नहीं हो पाती। अब विचार अगर बंद हो गया, स्थिरता आ गई, तो एकदम शार्प हो जाएगा वो ध्यान एकत्व वितर्क। तो मोह की प्रकृतियां जो होती है मोहनी कर्म की, उसका उपशमन करते हुए अथवा क्षय करते हुए पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवती, वो पृथक वितर्क विचार ध्यान के धारक होते हैं। स एव पुनः, और वे ही फिर समूल तलम मोहनीयम निर्दिदिक्षण, बिल्कुल आमूल चूल मोहनीय को जलाने के इच्छुक होते हुए अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित्य, अनंत गुण की विशुद्धि वाले योग अर्थात ध्यान विशेष का आश्रय लेकर बहुतराणाम ज्ञानावरण सहायी भूतानाम प्रकृतिनाम बंधम निरुंधन, बहुत से भी बहुत ज्ञानावरण में सहायक जो कर्म प्रकृतियां हैं अर्थात ज्ञानावरण के साथ चल रही और कर्म प्रकृतियां हैं उन सब के बंध को रोकते हुए स्थिति ह्रासक क्षयौच कुर्वन और स्थितिघात और स्थिति का ह्रास और स्थिति का क्षय करते हुए यानी स्थिति को कम भी करते हैं और स्थिति को नष्ट भी करते हैं दोनों काम करते हुए श्रुतक ज्ञानोपयोगी श्रुतक ज्ञान रूप उपयोग में निवृत्तार्थ व्यंजन योग संक्रांति। अब क्या हो जाता है दशम गुण स्थान पार हो गया तो फिर अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से निवृत्त हो गया, अब कोई परिवर्तन नहीं। जिस योग में वो चल रहा है ध्यान कोई भी योग हो सकता है, काय योग के साथ भी एकत्व वितर्क प्रारंभ हो जाता है, वचन योग से भी प्रारंभ हो जाता है, मनोयोग से भी हो जाता है, तो तीन में से कोई भी एक योग होगा तो अविचलित मना अविचल हो जाएगा उनका मन अर्थात ज्ञान एकदम स्थिर हो जाएगा। क्षीण कषायो और क्षीण कषाय होते हुए वैडूर्य मणि रिव निरुपलेपो, वैडूर्य मणि के समान निरुपलेप होकर ध्यात्वा ध्यान करके पुनर्न निवर्तत वापस नहीं लौटते। इत्युक्तम एकत्व वितर्कम, इस तरह से एकत्व वितर्क ध्यान कहा। एवं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर निर्दन्दधाति कर्मींधनः प्रज्वलित केवल ज्ञान गभस्ति मंडलो मेघ पंजर निरोध निर्गत इव घर्म रश्मिर्वा भासमानो भगवान तीर्थंकर तीर्थकर पितरो वा केवली लोकेश्वराणाम अभिगमनीयो अर्चनीय चोत्कर्षेण आयुष पूर्व कोटीम देशो नाम विहरति। अभी एकत्व वितर्क ध्यान से सीधे केवल ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन है क्योंकि क्षीण कषाय होकर वो एकत्व वितर्क का ध्यान करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो वर्णन कर रहे हैं उसके अनुसार उस एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी वैश्वानर यानी अग्नि से भली प्रकार निर्दग्ध घाती कर्म ईंधन जला दिया गया है, घाती कर्म रूपी ईंधन जिनके द्वारा ऐसे वे मुनि प्रज्वलित केवल ज्ञान प्रज्वलित यानी प्रकाशमान केवल ज्ञान रूपी गभस्ति मंडल सूर्य हो जाते हैं यानी केवल ज्ञान रूपी सूर्य से वे मुनिराज प्रकाशमान हो जाते हैं। और कैसे लगते हैं वो मेघ पंजर बादलों के पंजर से पिंजरे से और उस पिंजरे के निरोध से अर्थात रुकावट से निर्गत निकले हुए एव घर्म रश्मिर सूरज के समान भासमान प्रकाशमान होते हैं शोभित होते हैं भगवान तीर्थकर भगवान तीर्थंकर हो सकते हैं इत्रो वा केवली अन्य केवली भी हो सकते हैं और वे लोक के जो ईश्वर अर्थात तीन लोक के जो स्वामी हैं उनके द्वारा अभिगमनीय हो जाते हैं स्वीकार करने योग्य हो जाते हैं अर्चनीयश्च और पूजनीय हो जाते हैं अधिक से अधिक आयु के कुछ कम देशों नाम पूर्व कोटिम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तो लगेगा ना केवल ज्ञान होने में एकदम पैदा होते ही नहीं हो सकता उतना समय दीक्षा और सकल संयम की प्राप्ति में लग जाता है कर्म भूमि में मनुष्य को तो उतना कम कर लो और जो बची हुई आयु है एक पूर्व कोटि की अधिक से अधिक उतनी आयु तक के विहार करते हैं। स और वह यदांतर मुहूर्त शेषायुष्कस, जब अंतर्मुहूर्त आयु शेष रह जाती है तब वे केवली भगवान तत्तुल्य स्थिति वेद्य नाम गोत्रश्च भवति, आयु के समान स्थिति हो गई है जिनकी, ऐसे वेदनीय, ऐसे नाम कर्म और ऐसे गोत्र कर्म वाले बन जाते हैं, क्योंकि मोक्ष जाना है उनको, आयु तो पूरे होने आ गई और बाकी कर्मों की स्थिति आयु के बराबर ही रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयु पूरी हो गई, शरीर छूट गया और बाकी कर्म बाद में अपने समय पर नष्ट होंगे, नहीं, सभी नष्ट एक साथ होंगे, अगाति कर्म। तदा सर्वं वांग मानस योगम बादर काय योगम च परिहाप्य, तब क्या करते हैं कि संपूर्ण वचन योग, मनोयोग और बादर काय योग को परिहाप्य, अच्छी तरह से छोड़ करके, सूक्ष्म काय योग आलंबन, सूक्ष्म काय योग आलंबन, सूक्ष्म काय योग का आलंबन ले लेते हैं और वहां पर वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान मास्कंदितुम अर्हति इति, ध्यान को प्राप्त करने के लिए अर्हति यानी योग्य हो जाते हैं, यानी सूक्ष्म काय जब शेष रह जाता है सूक्ष्म काय योग, तभी ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान बन सकता है, तब उसमें, तब उनमें वो योग्यता होती है। यदा पुनः, और जब अंतर्मुहूर्त शेषायुष्कस, अंतर्मुहूर्त ही आयु बची है, उससे भी कम समय बचा है, और ततोधिक स्थिति शेष कर्मत्रयो भवति, लेकिन अब दूसरी स्थिति ऐसी आ रही है कि बाकी तीन कर्मों की स्थिति आयु से ज्यादा है, आयु अंतर्मुहूर्त है, नाम गोत्र और वेदनी कर्म की स्थिति ज्यादा है, 15 दिन बची हो किसी की 4 साल बची हो, और ऐसे अलग अलग स्थितियां हैं, तब क्या करेंगे। भवति सयोगी तदा, जब सयोग केवली जब इस अवस्था में रहते हैं कि जब उनकी स्थितियां समान नहीं है, तदा तब आत्मोपयोगातिशयस्य सामायिक सहायस्य, आत्मा का उपयोग रूप अतिशय जिनका सहायक है, सामायिक समय पर सहायता देने वाला है, उसके विशिष्ट करणस्य, और विशिष्ट है कर्ण जिसमें, ऐसे महासंवरस्य, महासंवर को प्राप्त जो हो चुके हैं उनके, लघु कर्म परिपाचनस्य, और बहुत कम समय में कर्मों का परिपाचन करने वाले हैं, पका डालने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, ऐसे अशेष कर्म रेणु परिसातन शक्ति स्वभाव स्वभाव्यात, और संपूर्ण कर्म रूपी रेणु यानी धूल, उसके परिसातन की शक्ति के स्वभाव से, उनके नाश की शक्ति के स्वभाव से, दंड कवाट प्रतरलोक पूर्णानि स्वात्म प्रदेश विसर्पणतश चतुर्भिः समयैः कृत्वा समपहृत प्रदेश विसरणः, दंड मैंने अपने शरीर से 3 गुना आत्म प्रदेशों को फैला करके, एक जैसे ये डंडा है, बस ऐसे ही आकार में आत्म प्रदेशों को बना करके ऊपर नीचे तक के विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, खड़े होते हैं तब, बैठते हैं तब, उसका कुछ भिन्न नियम है, तो ऐसा करके फिर कवाट, तो अभी तो ये डंडे के समान है, कपाट में फिर वो लकड़ी के दरवाजे जैसा हो जाता है, तो ऐसे कपाट खुल जाते हैं, तो पूरी जो त्रस नाड़ी है, उस त्रस नाड़ी में जितनी ये मोटाई है यहां से यहां तक के आत्म प्रदेशों की, उतना वो ऐसे फैल जाते हैं त्रस नाड़ी में, वात वलयों को छोड़कर। और उसके बाद प्रतर, प्रतर में क्या होता है कि फिर और बाहर फैल जाते हैं आत्म प्रदेश, यानी पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन जो लोक के, लोक की सीमा पर जो वात वलय है वहां तक नहीं जाते हैं, बाकी पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसको प्रतर कहते हैं। और अंत में लोक पूरण, संपूर्ण लोक के एक एक प्रदेश पर जीव के एक एक प्रदेश आ जाते हैं केवली भगवान के। तो ये उसकी राशि भी बताई है सिद्धांत में कि कितने केवली वर्ष पृथक तुम्हें समुद्घात करते हैं, मतांतर होते हुए भी किसी मत के अनुसार इतने केवली करते हैं। तो उतने काल के अंदर संपूर्ण लोक में केवली के आत्म प्रदेश रहते हैं, अपन उन्हीं आत्म प्रदेशों में घूमते फिरते हैं, पर एक समय का काल है, अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, एक समय के लिए ऐसा स्पर्श हो जाता है। और फिर अपने प्रदेश को विस्तृत करके चार समयों के माध्यम से विस्तृत करते हैं और फिर समुपहरित करते हैं, वापस आत्म प्रदेशों को लौटाते हैं। लोक पूरण से फिर प्रतर में आएंगे, प्रतर से फिर कपाट में आएंगे, कपाट से फिर दंड में आएंगे और दंड से फिर अपने शरीर में आएंगे। और इतना सब करने का परिणाम क्या निकलता है? तो भगवती आराधना की टीका में अपराजित सूरी जी ने लिखा है कि जैसे कपड़ा किसी ने धो लिया पर गीला है, पानी उसको निचोड़ लेता है, निचोड़ के ऐसे रख देता है तो रखने से वो सूखता नहीं है, तो फिर उसको फैला कर ऐसे फटकार देता है, सूख जाता है, तो फिर वापस फोल्ड करके रख देता है अपने पास। तो वैसे ही केवली भगवान जो है ऐसे फैल जाते हैं पूरे, और वो जो कर्म अधिक स्थिति वाले थे, आयु कर्म तो अंतर्मूर्त था लेकिन वेदनीय नाम और गोत्र की स्थितियां थोड़े ज्यादा थी, तो उनको आयु के बराबर कर देते हैं, सुखा सुखा के फटकार करके, और फिर वापस उपसंगृत करके वापस आ जाते हैं, अपने आत्मस्थ हो जाते हैं। पूर्व शरीर प्रमाणु भूत्वा, पिछले शरीर के प्रमाण, समीकृत स्थिति शेष, समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्टय, चारों कर्मों की स्थिति एक बराबर हो जाती है, आयु के बराबर ही सभी कर्म रह जाते हैं। और पूर्व शरीर प्रमाणुभूत, पहले शरीर के बराबर होकर के सूक्ष्म काय योगेन, सूक्ष्म काय योग के साथ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित ध्यानम, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित ध्यान को ध्यायते ध्याते हैं। ततस, उसके बाद तदनंतर, फिर उसके पश्चात समुच्छिन्न क्रिया निवर्तित ध्यान आरभते। देखिए आप, मूल सूत्र में विपरीत क्रिया निवर्ति लिखा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसका नामांतर दे दिया यहां पर कि वो अंतिम ध्यान को प्रारंभ करते हैं, चौदहवें गुण स्थान में आ जाते हैं, योग समाप्त हो गया। तो समुच्छिन्न क्रिया, क्रिया जो थी योग क्रिया थी, वो समुच्छिन्न हो गई, नष्ट हो गई। तो अनिवर्ती निर्वाण तक के जो चलता है जो ध्यान, वो आरभते, आरंभ करते हैं। समुच्छिन्न प्राणापान प्रचार सर्व काय वांग मनोयोग सर्व प्रदेश परिस्पंद क्रिया व्यापारत्वात् समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति इत्युच्यते। क्यों कहते हैं इसको समुच्छिन्न क्रिया? तो बोले समुच्छिन्न हो चुके हैं प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास, सांस समाप्त हो जाती है, तेरहवें गुणस्थान तक श्वासोच्छ्वास थी, चौदहवें में श्वासोच्छ्वास समाप्त हो गए, आयु तो बची है, और क्या समाप्त हुआ? सर्व काय वांग मन मनोयोग, संपूर्ण काय वचन और मनोयोग समाप्त हो गया। फिर सर्व प्रदेश परिस्पंद क्रिया, संपूर्ण प्रदेशों के परिस्पंद क्रिया भी समाप्त हो गई। तो इनके व्यापार सब समाप्त हो जाने के कारण उस ध्यान का नाम समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति, अनिवर्ति निवर्ति तक के इत्युच्यते, ऐसा कहा जाता है। तस्मिन् समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति ध्याने, उस समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति ध्यान में, सप्तमी का एक वचन है, सर्व बंध आश्रव निरोध, सर्व बंध और आश्रमों का निरोध हो जाता। पहले तो साता का आश्रव हो रहा था जब तक योग था, अब वो भी समाप्त हो गया। फिर सर्वाशेष कर्म सातन सामर्थ्योपपत्ते, और संपूर्ण बचे हुए कर्मों को सातन करने की शक्ति वहां पर संगत हो जाती है, मतलब पूरी शक्ति आ जाती है, सब कर्मों को नष्ट करने की शक्ति वहां पर आ जाती है। और वे अयोगी न केवली न अयोग केवली, अयोगी केवली संपूर्ण यथाख्यात चारित्र दर्शन ज्ञान दर्शनम, संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान और दर्शन को सर्व संसार दुख जाल परिश्वंकोच्छेद जननम साक्षात मोक्ष कारणम उपजायते, उन केवली को ये चौथा शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। कैसा है चौथा शुक्ल ध्यान? जिसमें संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान भी संपूर्ण है, दर्शन भी संपूर्ण है, चारित्र भी संपूर्ण है, और क्या क्या है, सर्व संसार के दुख जाल का जो परिश्वंग है, संबंध है, उसके उच्छेद को उत्पन्न करने वाला जो है वह समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती ध्यान है, और साक्षात मोक्ष का कारण है वह उत्पन्न होता है। सपुनरयोग केवली भगवान सदा, और वे अयोग केवली भगवान उस समय ध्यानातिशयाग्नि निर्दग्ध सर्व मल कलंक बंधनों, ध्यान के ध्यान रूपी अतिशयकारी अग्नि से, या ध्यानातिशय रूपी जो अग्नि है उससे जला डाला है सर्व मल कलंक बंधन जिन्होंने, निरस्त किट धातु पाषाण जात्य कनकवत लब्धात्मा परिनिर्वाति, निरस्त हो गए हैं किट धातु पाषाण में से निकला हुआ जो जात्य कनक है, सबसे उत्कृष्ट जाति का जो सुवर्ण होता है उसके समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, आत्मा को प्राप्त करके मोक्ष चले जाते तदेतद् द्विविधम, वो यह दो प्रकार का है, तपोभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम, तपश्चरण के द्वारा नवीन कर्मों के आश्रव में निरोध का हेतु होने के लिए होने के कारण संवर का कारण है वो, और प्राक्तन कर्म रजो विधूनन निमित्तत्वात् निर्जरा हेतुरपि, पूर्वकालीन जो कर्म बंद हुआ था उसकी धूल को झड़ाने में कारणभूत होने से निर्जरा का कारण भी है। अर्थात ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है वो पूर्ण संवर का कारण है और पूर्ण निर्जरा का कारण है, तो जहां पूर्ण हो जाता है वहां मोक्ष हो जाता है, इसलिए मोक्ष का कारण है। इस तरह इस अध्याय में सारा वर्णन जो संवर के हेतु थे और निर्जरा के हेतु थे उनका वर्णन पूर्ण हुआ। अब निर्जरा के जो स्थान है उनका वर्णन आगामी सूत्र में किया जाएगा। जैनम जयतु शासनम।